गर्भधारण और गर्भावस्था। भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है, सुंदर आंखें, सुंदर बाल, पतली सी नाक। थैंक यू गॉड, अगर मेरा बच्चा हो तो वो भी इतना ही खूबसूरत होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ? गर्भवती होने के सभी लक्षण सब में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लक्षण इस प्रकार के होते हैं। बार बार पेशाब की इच्छा होना, कुछ स्वाद अच्छे नहीं लगना तो कभी अटपटी स्वाद भाना, उल्टी होना या उबकाई आना। इनमें से कोई भी लक्षण ना दिखाई दे यह भी मुमकिन है। अगर आपको सही पता लगाना है कि आप गर्भवती हैं या नहीं, तो इसकी जांच आप अपने घर पर ही प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट से कर सकते हैं। अब अगर आप गर्भवती हैं, तो जल्द ही अपनी पहली जांच की तारीख अपने डॉक्टर से तय कर लें। डॉक्टर आपका परीक्षण करेंगे और आपको बधाई देंगे।
बहुत ही खुशी की बात है, आप माँ बनने वाली है, अभिनंदन। और ये समय है अपना ज्यादा ख्याल रखने का, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप फिट रहे, सक्षम रहे और जानकार रहे, और साथ में ये भी ख्याल रखें कि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से अच्छा हो। ये सब कैसे होगा? आपके डॉक्टर्स आपको गाइड करते होंगे, आप कोई किताब में पढ़ते होंगे और बहुत सारे रिलेटिव भी कुछ न कुछ एडवाइस देते होंगे। तो अभी हम भी आपके साथ है ये वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से। आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेके डिलीवरी तक, डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल केयर तक और थोड़े से बच्चे के ख्याल तक भी, ताकि आप अच्छे रहे, आप खुश रहे और आप स्वस्थ रहे। तो चलिए अपनी ये जर्नी अभी हम साथ में शुरू करते हैं।
गर्भवती होना स्त्री के जीवन में सौभाग्य की बात है। आपके परिवार, पति और शुभचिंतक बहुत आनंदित होंगे। अपना और आने वाले शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये ख्याल रखना और सही मेडिकल केयर लेना आवश्यक है। आपके और आने वाले बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए अपने डॉक्टर से जांच कराते रहें। 7 मास तक हर मास, 7 से 9 मास तक हर 15 दिन और फिर प्रसूति तक हर 8 दिन में जांच करवाएं। डॉक्टर आपकी मेडिकल फाइल बनाएंगे, जिसमें आपका समय समय पर वजन लिखेंगे, ताकि बच्चे के विकास का पता चलता रहे। आपके खून और पेशाब की जांच करवाएंगे, टेटनस टॉक्साइड यानी धनुर के इंजेक्शन लगवाएंगे, दवाइयाँ और खाने पीने के बारे में बताएंगे, ताकि माता और गर्भस्थ शिशु का सही विकास हो, और अल्ट्रासाउंड से परीक्षण करेंगे। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपके गर्भ में पलने वाले शिशु का स्वास्थ्य और विकास सही है या नहीं, हृदय की धड़कन सही है या नहीं, और ऐसी बहुत सी बातें अल्ट्रासाउंड से जानी जाती हैं। सोनोग्राफी से गर्भस्थ शिशु को हानि नहीं पहुंचती और यह जानकारी से प्रसूति में आसानी होती है।
ओके स्मृति, जैसे एग्जामिनेशन में सब कुछ ठीक था, प्रेगनेंसी भी अच्छी तरह से दिख रही है और सब ठीक है। ओके अच्छा, अभी ना अब आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं। ये सब रूटीन ब्लड टेस्ट है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, आपका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, थायराइड वगैरह, बिल्कुल ये रूटीन टेस्ट है। ठीक है, कोई भी अच्छी लेबोरेटरी में हो जाएगा, तो ये आप करवा लेना। नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो भी रिपोर्ट लेके आना है आपको। ठीक है अच्छा, दवाई के मेडिसिन में आपको एक तो फोलिक एसिड, जो आप पहले से प्रेगनेंसी के पहले से ले रहे हैं, वो कंटिन्यू करने हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि फोलिक एसिड जब लेते हैं तो बेबी का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और बेबी को कोई स्पाइन में डिफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, और दूसरी मेडिसिन जो मैंने लिखा है वो आपको अगर इनकेस नौशिया वॉमिटिंग होता है तो ले सकते हैं, रूटीनली लेने की जरूरत नहीं है। और कोई मेडिसिन की आपको जरूरत पड़े तो मुझे पूछे बिना आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। ठीक है,
सगर्भावस्था दौरान स्वस्थ भारतीय आहार। आप अपने प्रसंग अनुसार सही मात्रा में दिन में कम से कम 4 बार अनाज से बने आहार लें, जैसे कि चावल, रोटी, इडली, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, दालें और पल्सेस। मूंग और मूंग की दाल जैसी दालें पचने में आसान होती है। राजमा, उड़द, छोले जैसी चीजें पचने में भारी होती हैं। इससे एसिडिटी बढ़ती है, यह बहुत कम खाएं। दाल और पल्सेस पकाते समय अजवायन, मेथी जैसे मसालों का उपयोग करने से पाचन क्रिया जल्द होगी। दूध और दूध से बनी चीजें शक्तिवर्धक, पोषण युक्त और संपूर्ण आहार है। स्किम्ड मिल्क का यूज करें, क्योंकि मलाई मक्खन पचने में भारी होते हैं। छाछ के सेवन से पाचन क्रिया में फायदा होता है। सवेरे और शाम के खाने में दही का प्रयोग करें। याद रहे, खट्टा दही न खाएं। आपके आहार में रोजाना 4 से 5 कटोरी सब्जियां जरूरी है और हरी पत्ती वाली सब्जियां भी जरूरी है। इस अवस्था में आहार में फलों का उपयोग बढ़ाएं और रोजाना कम से कम 3 बार अलग अलग फल जरूर खाएं। केला खाना माँ और बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। पपीता खाने से मिसकैरेज होगा, ये मान्यता गलत है। सगर्भावस्था दौरान प्रवाही और पानी ज्यादा मात्रा में लेते रहें। कम से कम 10-12 ग्लास पानी और फलों के रस, नारियल पानी, छाछ, सूप्स, दूध वगैरह ज्यादा मात्रा में लेते रहें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और गर्भस्थ शिशु का विकास भी सही होगा। फॉलिक एसिड का महत्व। फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 या फॉलेट भी कहते हैं, वह ज्यादातर पाया जाता है हरी सब्जियों में, जैसे कि पालक और मेथी, साथ ही ऑरेंज जूस, एनरिच ग्रेन्स, सोयाबीन, बादाम, केला वगैरह में भी पाया जाता है। अपने होने वाले बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जन्मजात खामियों से बचाने के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। इसे प्रेगनेंसी के प्लानिंग के समय से लेकर सगर्भावस्था दरमियान रोजाना 400 माइक्रोग्राम लेना आवश्यक है। इसलिए फॉलिक एसिड युक्त आहार और डॉक्टर ने दी हुई फॉलिक एसिड की दवाइयाँ भी लेते रहें। याद रहे, अपने गर्भ में पलने वाले शिशु के संपूर्ण विकास के लिए और अपने शरीर को प्रसूति एवं गर्भावस्था के समय पर स्वस्थ रखने वाली दवाइयाँ और जरूरी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने में लापरवाही ना करें। सगर्भावस्था के संपूर्ण 9 मास के समय को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्सा 3 मास का होता है, जिसे ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। गर्भावस्था के इन 3 ट्राइमेस्टर्स के समय काल में स्त्री की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत से बदलाव आते हैं। इन 3 ट्राइमेस्टर्स में बच्चे की संपूर्ण शरीर रचना तैयार और कार्यरत होती है और इस धरती पर एक और व्यक्ति का आगमन होता है, जैसे हम और आप। क्या आप इस जटिल पर आश्चर्यकारक घटना को सविस्तार समझना चाहेंगे? बच्चे का विकास कैसे होता है, दिल कब धड़कता है, वह उंगली कैसे चूसता है, आइए देखें। माता के अंडाशय में अंड निर्माण होता है और फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु से मिलन होकर वह फलित होता है। उसके 3 या 4 दिनों में वह यूट्रस यानी कि गर्भाशय में पहुंचकर दीवार से चिपक जाता है और गर्भ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा भ्रूण बनता है और दूसरा हिस्सा प्लेसेंटा। 6 हफ्तों के बाद एक महत्व की घटना बनती है। बच्चे का दिल धड़कने लगता है और उसके पूरे शरीर में खून दौड़ने लगता है। इस अवधि में अम्बिलिकल कॉर्ड आकार लेता है और साथ ही साथ सिर, आंखें, आंते और लीवर भी आकार लेते हैं। 10 हफ्तों में इस गर्भ में पलने वाले बच्चे की बाहरी जननेंद्रियों का आकार का विकास होता है और साथ ही चेहरा, हाथ, पैर, उंगलियां, नाक, कान, आंखें, इन सब का आकार साफ होता है। इन प्रथम 3 मास के समय काल में आपको थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी और पेट में जलन, स्किन और कॉम्प्लेक्शन में बदलाव, स्वाद की चाहत में बदलाव, कब्ज, सरदर्द और डिस्टर्ब्ड नींद, इन सारी बातों से आप परेशान ना होइए। थोड़ी सी जानकारी और आपके डॉक्टर का मार्गदर्शन आपकी परेशानियों को दूर कर देगा और आपको स्वस्थ रखेगा। दूसरे तीन मास, सेकेंड ट्राइमेस्टर। जब गर्भावस्था का दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तब मिसकैरेज का खतरा कम होने लगता है। बच्चे के रिप्रोडक्टिव अंगों का विकास होता है और साथ ही साथ सर पर बाल आने लगते हैं। आंखों की पुतलियां बनती है, हाथ और पांव की उंगलियों पर नाखून आना शुरू हो जाते हैं। 20-22 हफ्तों में बच्चे का हलन चलन महसूस होता है। बच्चे के कान की अंदरूनी हड्डी आकार लेती है और बच्चा बाहर होने वाली बड़ी आवाज पर प्रतिक्रिया भी करता है। बच्चे के दिमाग का विकास होता है। पैर हिलाते हुए अल्ट्रासाउंड इमेज में बच्चे को देख भी सकते हैं। गर्भावस्था के इस दूसरे चरण में आप महसूस करेंगी बेचैनी, योनि मार्ग से चिकना पानी बहना, चक्कर आना या नींद न आना, पैरों में दर्द होना या पेट पर चमड़ी का खिंचाव आना और खुजली आना। परंतु रोजाना एक्सरसाइज, आराम, थोड़ा थोड़ा दिन भर का खाना, समय पर मेडिकल चेकअप, मसाज और ज्यादा पानी पीना, ये सब आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। अगर 28 सप्ताह के बाद बच्चा पैदा होता है और तब बच्चे के जीवित रहने की संभावना ज्यादा रहती है। गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में बच्चा श्वास लेने का प्रयत्न करता है और इसी कारण बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड वो थोड़ा सा निगल लेता है और इससे बच्चे को हिचकी आती है। इन दिनों में बच्चे का वजन सबसे ज्यादा बढ़ता है। 40वें सप्ताह में बच्चा संपूर्ण तैयार हो जाता है और कभी भी जन्म ले सकता है। प्रसूति की अंदाजित दी गई तारीख के 1-2 सप्ताह आगे पीछे भी प्रसूति हो सकती है। गर्भावस्था के इस तीसरे दौर में आप महसूस करेंगी प्रसूति पीड़ा के बारे में चिंता और आप इसे कैसे मैनेज करें ये जानना महत्वपूर्ण है। वॉच योर बेबी। आपके पेट में पलने वाला बच्चा बाहरी दुनिया से तब तक संपर्क में रहता है जब तक जागता रहेगा, तब तक हलन चलन करता रहेगा और घूमता रहेगा। 6 मास के बाद वह बाहरी आवाज की प्रतिक्रिया देगा। आपकी आवाज की ताल पर अपने शरीर और हाथ पैर हिलाएगा या शायद जंप करे या किक लगाएगा। ब्राइट लाइट या ज्यादा उजाला उसे अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर फ्लैश का उजाला नहीं सह पाता। वह हिलेगा या अपने चेहरे पर अपने हाथ रखेगा। माता की भावनाओं का बच्चे पर सीधा असर होता है। अपने पेट में पलते बच्चे से बातें करें, गाना गाएं, पेट पर हाथ फेर कर या छू कर अपने बच्चे के संपर्क में रह सकते हैं। इससे बच्चा शांत रहेगा। सावधान रहिएगा, आपकी खुशी, आपकी पॉजिटिव सोच, आपके दुख और चिंता सबकी असर बच्चे पर होती रहती है। बहुत जोर के झटके से हिलने चलने पर गर्भाशय पर जोर लग सकता है और बच्चे पर दबाव पड़ सकता है। बच्चा हर वक्त मूवमेंट नहीं करता, कभी सोता है, कभी जागता है और कभी हिलता रहता है। पिता की भूमिका। पिता बनना एक रोमांचित और जिम्मेदारी सभर घटना है। गर्भावस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करें, गर्भस्थ शिशु के विकास के बारे में जानें, बच्चे के हलन चलन को महसूस करें, मेडिकल चेकअप के लिए साथ जाएं, सोनोग्राफी के दौरान अपने बच्चे को देखना रोमांच और आनंद देता है। प्रीनेटल क्लास में साथ जाकर लामाज ब्रीदिंग सीखें और अपनी पत्नी को इसकी प्रैक्टिस कराएं। अपने आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए अपने घर और दिल में जगह बनाएं और पत्नी के खान पान, आराम और व्यायाम में साथ दें।
ज्यादातर ये होता है कि एक फादर को फादर जैसी फीलिंग तब आती है जब बच्चे का जन्म होता है, मगर ऐसा क्यों? आप प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे के साथ इमोशनली जुड़ सकते हैं, उसकी मूवमेंट फील कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड में बच्चे को देख भी सकते हैं और हाँ, अपनी वाइफ को लेबर में एक्टिवली हेल्प भी कर सकते हैं और जन्म के बाद भी बच्चे से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। एक फादर और एक मदर बच्चे के साथ कंसेप्शन के साथ ही जुड़ सकते हैं।
दस्तक गिनो, यह एक उत्तम तरीका है माता के लिए गिनती का। आप बच्चे की मूवमेंट को महसूस कर सकती हैं। गिनना जरूरी है। रोजाना बच्चे की मूवमेंट की गिनती रखें। 10 बार मूवमेंट हो जाए फिर गिनती बंद करें। अगर मूवमेंट कम हो तो डॉक्टर को इसकी जानकारी दें और जांच करवाएं। प्रथम तीन मास की गर्भवती महिलाओं को कई सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, जैसे कि आराम से चलें और शरीर पर जर्क न आने दें, भारी वजन उठाने की कोशिश भी ना करें, खेलकूद, भागना और भारी कामों से दूर रहें और अपने आप को गिरने से या पेट पर चोट लगने से बचाएं। अपने शरीर को आराम दें और पोस्चर्स की शिक्षा दें। द्वितीय तीन मास की गर्भवती महिला, खड़े रहने का सही पोस्चर। सर को सीधा ऊपर खींचा हुआ रखें, कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ खींच कर रखें, घुटनों को सीधा रखें पर लटकते ना रखें, पेल्विस को अंदर की तरफ और आगे की तरफ खींचा हुआ रखना चाहिए, कमर को आगे या पीछे झुकी हुई ना रखें, अपने वजन को दोनों पैरों में बराबर बांट कर खड़े रहें, बहुत देर तक एक ही स्थिति में ना खड़े रहें, कुर्सियां या सोफे पर कमर के इस हिस्से को सीट के पीछे चिपका कर बैठें और तकिए का उपयोग करें, अपने दोनों नितंबों पर अपने वजन को बांट कर बैठें, अपने घुटनों और नितंबों को सही एंगल में रखें, जरूरत पड़ने पर स्टूल या फुटरेस्ट का उपयोग करें, अपने पैरों को क्रॉस रखकर न बैठें, एक अवस्था में 30 मिनट से ज्यादा न बैठें, कुर्सी टेबल पर काम करते वक्त कुर्सी की ऊंचाई ठीक रखें और सीधे बैठकर अपना काम करें, वजनदार चीज उठाने में किसी की मदद लें, झुककर चीजें ना उठाएं, पीठ को सीधी रखते हुए बैठें और चीजें उठाइए, अपने पेट को थोड़ा सा खींचकर टाइट करें, फिर पैरों पर जोर लगाकर चीज उठाइए। सामान्य रूप से गर्भवती महिला को अपने पीठ के बल सीधा सोना या अपने पेट के बल उल्टा सोना मना है। खासकर आखिरी गर्भावस्था की स्थिति में ऐसा करने से पीठ के दर्द की संभावनाएं बढ़ती हैं। नींद के दौरान शरीर को बाएं या दाएं फेरने में कोई नुकसान नहीं है और नींद पर आपका कंट्रोल भी नहीं है। आखिरी चरण की गर्भावस्था में महिला को बाएं तरफ मुड़कर सोने की सलाह दी जाती है ताकि पेट में पलने वाले बच्चे को खून सही मात्रा में मिलता रहे। ज्यादातर गर्भवती महिला को पीठ का दर्द रहता है क्योंकि इस अवस्था में शरीर में हार्मोन्स के बढ़ने से मांसपेशियों और जोड़ों में शिथिलता आ जाती है, साथ ही आपका वजन भी बढ़ा है और आपके शरीर के लिए यह सब नया है।
बैक प्रेस, घुटनों को मोड़कर अपने पीठ के बल सोइए, हाथों को अपनी पीठ के नीचे रखिए, पीठ से हाथों को दबाए, 5 गिने तक रुके, रिलैक्स हो जाए। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, हाथ कान को छूना चाहिए, ऊपर की तरफ खींचिए और तनाव महसूस करें, अब दूसरे हाथ से करें। अपने दाहिने हाथ को बाएं तरफ ले जाएं, ऊपर की तरफ खींचकर आगे ले जाएं, तनाव महसूस करें, अब दूसरी तरफ ऐसा ही कीजिए। इस तरह बैठें, घुटनों के पास हथेली और कोहनी ऐसे रखें, दूसरे हाथ को ऊपर ले जाकर झुक जाएं और कमर में तनाव महसूस करें। इस तरह बैठें, अपना दायां हाथ पीछे रखें, बायां हाथ अपने दाएं घुटने पर रखें, पीछे की तरफ घूमिए, अब दूसरी तरफ कीजिए।
इस तरह स्ट्रेच को 8-8 बार करें और अपनी पीठ और कमर को स्वस्थ और मजबूत बनाएं ताकि आपको बैकएक न हो। सगर्भा के लिए एक्सरसाइज के फायदे। सही मात्रा में वजन बढ़ता है। सामान्य तकलीफें जैसे कि कमर दर्द, सूजन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में राहत मिलती है। अच्छी नींद आती है, स्फूर्ति बढ़ती है, शरीर प्रसूति के लिए तैयार होता है और प्रसूति के बाद कम समय में शरीर पहले जैसा सुडोल हो जाता है।
वेस्ट का व्यायाम। सीधा बैठिए, कोहनी और हथेलियों को जोड़कर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, इन हाथों को किताब की तरह खोलिए और जोड़िए, ऐसा 5 मरतबा कीजिए। कमर को सीधा रखकर आराम से बैठे, दोनों हाथों को जोड़कर आंखों की ऊंचाई तक ले जाए और हाथों को जितना ऊंचा उठा सके उठाएं, 5 गिने तक रुकिए, फिर नीचे ले जाए, ऐसा 5 मरतबा कीजिए। पैरों को क्रॉस रखकर बैठिए, अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर अपनी छाती तक ले जाएं, फिर हथेलियों को जोर से दबाएं, 5 गिने तक रुकिए। यह व्यायाम आइसोमेट्रिक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तब ना करें। पैरों की उंगलियों और एड़ी पर चलना। अपने पैरों की उंगलियों पर 20 कदम चलिए, फिर अपने एड़ी पर 20 कदम चलिए। मजबूती से किसी चीज का सहारा लें, अपने पैरों को इतना फैलाएं, धीरे धीरे खुद को नीचे की तरफ ले जाएं, घुटनों को बाहर की तरफ जाने दें। आपकी सहन शक्ति तक रुकिए। अपनी थाई और पेल्विस फ्लोर को कसते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए। केगल व्यायाम।
तो इसमें क्या करना है कि जो अंदरूनी मसल्स है उसे आपको टाइट करना है, जैसे कि यूरिन को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर की मसल्स को एकदम टाइट करें, 1, 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स। और एक बार अंदर की मसल्स को एकदम टाइट करें।
10 के सेट में दिन में कई बार कीजिए या कभी भी कर सकते हैं, सोते हुए, बैठे हुए या खड़े रहकर। यह आसान है, आपके रोज बरोज के कार्यों के बीच इसे जोड़ लें। बच्चों को जन्म देने में आसानी लाने या केगल व्यायाम बहुत जरूरी है। बच्चे के जन्म के बाद आपके पेल्विस फ्लोर मांसपेशियों को पूर्ववत लाने में बहुत उपयोगी है।
लेबर के दौरान आसान प्रसूति के लिए अच्छी पोजीशन लेना आवश्यक है। यह व्यायाम आपके शरीर को प्रसूति के लिए तैयार करता है। अगर आपको ये तकलीफें हैं तो आप एक्सरसाइज ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। प्रसूति का दर्द समय से पहले आए तब, खून बहने लगे तब, अगर योनि मार्ग से पानी बहने लगे तब।
पहले 3 महीने में आप शायद बहुत ही कम एक्सरसाइज कर पाएंगे, वॉकिंग स्ट्रेचिंग इतना ही करना, मगर 2nd 3 months यू कैन डू वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, वो भी फिजियोथेरेपी से या डॉक्टर से सीख के। और आखिरी 3 महीनों में आपको स्पेशल लेबर एक्सरसाइज करनी है ताकि आप लेबर के दौरान पोजीशन ठीक से ले सके, चाइल्ड बर्थ में अच्छे से पार्टिसिपेट हो सके। और जब आप इतने अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो पोस्टनेटल पीरियड में आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपका फिगर भी जल्दी से नॉर्मल हो जाएगा।
तो ये एक्सरसाइज आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे के दौरान बहुत सारा करना होता है, सांस रोकनी होती है, बच्चे को पुश करना होता है, पोजीशन लेनी होती है, ये सब एक साथ में इकट्ठा हो जाता है। और उस समय जब पोजीशन लेना भी मुश्किल होता है तो मुश्किलें बढ़ती है, इसीलिए लेबर एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं लेबर एक्सरसाइज जो 4 स्टेज में होती है। सबसे पहला स्टेज है, आप अपना ये पैर को स्टेडी रखें, उसे बिल्कुल ही नहीं हिलाएं। और ये जो पैर है उसे आप पहले ऊपर की तरफ करेंगे, फिर बाहर की तरफ और फिर अपने शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। और ये पोजीशन को आप 5 घंटे तक पकड़ के रखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और फिर से उसे सेंटर में लाके वापस अपनी जगह पे रख दीजिए। तो आपने समझा ना, उसी तरह से ये पैर भी कर। अभी हम दूसरा स्टेप करेंगे जिसमें यही एक्सरसाइज करेंगे मगर दोनों पैर से करेंगे, मगर बहुत आराम से करेंगे, पैरों को रिलैक्स रख के करेंगे ताकि आपको बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होगी, अच्छा लगेगा। तो दोनों पैरों को ऊपर करिए, फिर उसे खोलिए और अपने शोल्डर की तरफ जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही ले जाइए। अभी करते हैं हेड एंड नेक रेज। तो एक हाथ को यहाँ रख दीजिए और अपने पैर, अपने शोल्डर और नेक को थोड़ा सा ऊपर लाइए, नजर ऊपर की तरफ। यस, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और नीचे कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपके अपर एब्डोमिनल्स को तैयार करती है पुश करने के लिए और वहां पे फैट डिपोजिशन भी कम होगा। अभी लास्ट पोजिशन है जिसमें आप पहले दोनों पैरों से पोजिशन ले लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर और फिर खोल के अपनी तरफ ले जाइए। ये पोजीशन में जब आप कंफर्टेबल फील करें फिर दोनों हाथों को यहाँ ले जाइए और हेड एंड नेक को भी रेज करें। वेरी गुड, होल्ड दिस पोजीशन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी पहले सर को नीचे रख दीजिए और धीरे से दोनों पैरों को साथ करते करते नीचे रखिए।
लेबर यानी कि प्रसूति हर स्त्री के जीवन का एक बहुत ही डरावना अनुभव होता है, और सही बात तो ये है कि इतना डरावना या इतना पेनफुल नहीं है कि जितना लोग सोचते हैं, मगर इतनी सारी आपने कहानियां सुनी है उसके बारे में, हॉरर स्टोरी सुनी है कि आप ज्यादा डर गई है। तो जितना आप लेबर के बारे में ज्यादा समझेंगे, जानेंगे स्टेजेस के बारे में, ब्रीदिंग पैटर्न्स के बारे में, पोजीशंस के बारे में, कम्फर्ट पोजीशंस के बारे में और हस्बैंड्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, उतना आप इस स्टेज से अच्छे से पास हो पाएंगे, कॉन्फिडेंटली पास हो पाएंगे और अपने डॉक्टर के साथ 100% कोऑपरेट करके पास हो पाएंगे।
अगर आप प्रसूति के बारे में सही वैज्ञानिक जानकारी हासिल करती हैं और शरीर की क्षमता को बढ़ाती हैं और एक आत्मविश्वास रखती हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छे से जन्म दे सकती हूँ, तो आप कर सकती हैं। आइए जाने कैसे। प्रसूति की पीड़ा दो प्रकार की होती है। सही प्रसूति की शुरुआत में गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होता है, उसका अंतराल धीरे धीरे कम होने लगता है और समय व दर्द भी बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि आप अगर अपने शरीर की स्थिति भी बदलें तब भी राहत नहीं होती। पहले दर्द कमर के निचले हिस्से में शुरू होता है, फिर पेट के निचले हिस्से में और फिर पैरों में। जब अंतराल कम होने लगता है और रेगुलर है तब इसका समय लिख लेना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर रहता है और दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना अंतराल रहता है। इस समय आपके योनि मार्ग से गुलाबी या लाल खून जैसा चिकना डिस्चार्ज भी हो सकता है। कुछ प्रसूताओं में पाया गया है कि प्रसूति के समय के पहले ही बच्चा जिस पानी की थैली में होता है वह फट जाती है और योनि मार्ग से पानी बहने लगता है। बस आप अपने डॉक्टर को बता दें और आप जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएं। अगर गर्भावस्था के दौरान आपने सही एक्सरसाइजेस की है तो शरीर तैयार रहेगा और पीड़ा भी कम से कम महसूस होगी। हाँ, थोड़ी बेचैनी रहेगी मगर ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन से काफी राहत रहेगी। श्वासोच्छ्वास की यानी कि ब्रीदिंग की रीत सीखना आपके लिए जरूरी है। इनमें से हर एक रीत प्रसूति के समय आपको आरामदेह साबित होगी। शक्ति जुटाने में, अपने शरीर और पीड़ा पर काबू पाने में, आपको मन से शांत रखकर डर पर काबू पाने में मदद करेंगी। प्रसूति के समय पर श्वासोच्छ्वास क्रिया आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगी। को पूरी तरह अंदर लें, फेफड़े हवा से भर जाएं और पेट भी ऊपर आ जाएं, इतनी सांस लें और फिर मुंह से निकाल दें। डीप ब्रीदिंग कॉन्ट्रैक्शन के शुरू में और आखिर में करना जरूरी है। इस प्रकार की ब्रीदिंग सिर्फ आपके फेफड़े तक रहती है और पेट तक नहीं जाती। इस प्रकार की ब्रीदिंग फास्ट होनी चाहिए। इस प्रकार की सांसें प्रसूति की पीड़ा की सीमा के समय बहुत उपयोगी है। हल्की सी छोटी सी सांसें लें और जल्दी जल्दी लें। यह शैली प्रसूति के तेज कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जल्द आराम दिलाती है और आपको नीचे की तरफ पुश करने की पीड़ा से बचाती है। बच्चा प्रसूति के कुछ सप्ताह पूर्व से ही नीचे पेल्विस की तरफ बढ़ने लगता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दबाव कम रहता है। पहली प्रसूति में ये प्रक्रिया प्रसूति के एक या दो सप्ताह पूर्व से होनी शुरू होती है और बच्चा प्रसूति की कैनाल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे एंगेजमेंट कहते हैं। आपको इस प्रक्रिया का पता नहीं चलता है, मगर चेकअप के दौरान डॉक्टर को ये जानकारी मिलती रहती है। एंगेजमेंट्स की प्रक्रिया प्रसूति के कुछ घंटे पूर्व भी हो सकती है। प्रसूति का पहला स्टेज। प्रसूति का यह स्टेज लंबा है। यह संकोचन सर्विक्स 9 सेंटीमीटर तक खुले तब तक चलता है और इसमें तीन अलग अलग चरण होते हैं। इस फेज की शुरुआत में संकोचन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर हल्की सी और करीबन 30 मिनट या ज्यादा समय के अंतराल में होती है। धीरे धीरे 10 से 15 मिनट के अंतराल में संकोचन होता है। इस स्टेज में अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में आपके पति आपको मसाज के जरिए मदद कर सकते हैं। कई महिलाएं इस स्थिति में स्वस्थ रहती हैं। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इस तरह से ब्रीदिंग करें, मगर आप डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें और उनकी सलाह के अनुसार आगे बढ़े।
दो संकोचन का अंतराल 15 मिनट से घटकर हर 5 मिनट का होता है। संकोचन का समय काल 20 से 40 सेकंड तक बढ़ता है।
इस तरह से ब्रीदिंग करते रहें। इस स्थिति में स्वस्थ रहें, बाथरूम जाएं और कुछ पिएं। ज्यादातर महिलाएं ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। प्रसूति के इस फेज में मोबिलिटी और ब्रीदिंग रिलैक्सेशन बहुत उपयोगी होगा। इन पोजीशंस का प्रयोग करें। प्रसूति के दौरान की यह स्थिति कम समय की है, पर बहुत ही मुश्किल है। अब संकोचन की पीड़ा 2 या 3 मिनट के अंतराल में आती रहेगी और 1 मिनट तक चलती रहेगी। यह स्थिति सामान्यतः 1 से 2 घंटे तक रहती है। कॉन्ट्रैक्शन आता है तब सही तरीके से ब्रीदिंग करना आवश्यक है, मगर पुश बिल्कुल ना करें। अब सांस रोककर ठोस इरादे से ध्यान केंद्रित करके पुश करने की जरूरत है। अब आपको संकोचन के साथ साथ बच्चे को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको पुश करने की इच्छा होगी, आप थोड़ा बहुत पुश भी करती होंगी। अपनी इस स्वाभाविक इच्छा का उपयोग कर पूरे इरादे से सांस को लंबे समय तक रोककर पुश करें। यह स्टेज यहाँ पूरा हुआ। बधाई हो, आपका बच्चा आपकी दुनिया में आ गया है। प्लेसेंटा बाहर निकालने के लिए शायद आपसे पुश करने को कहा जाए। प्लेसेंटा में हड्डी न होने की वजह से बड़ी आसानी से यह बाहर आ जाएगा। सिजेरियन में सर्जिकल प्रोसीजर से बच्चे को पेट से निकाला जाता है। पेट पर नाभि के नीचे चमड़ी पर ऐसे कट लगाते हैं, फिर गर्भाशय तक पहुंचकर उसे भी कट लगाकर इस तरह बच्चे को बाहर निकालते हैं। माता या बच्चे की जान जोखिम में हो या फिर विकट परिस्थिति से उभरने के लिए यह किया जाता है। यह एक सामान्य ऑपरेशन है और डर की कोई बात नहीं है। पोस्टनेटल केयर, आपको अपने बच्चे को जन्म देने का अद्भुत रोमांच होगा। अपना बच्चा आपको जाना पहचाना सा लगेगा। उसका हर अंग, उसका रोना आपको रोमांच से भर देगा। जो बच्चा अब तक आपके पेट में संपूर्ण सलामती से रहा करता था, अब वह बाहरी दुनिया में आ चुका है। अब इसे बाहरी वातावरण के साथ एडजस्ट होना होगा। अब उसे भूख, गर्मी, सुरक्षा, अकेलापन जैसी बातों की आदत डालनी होगी। और आप ही हैं जो उसे यह सब कुछ दे सकती हैं। बच्चे को जन्म देना एक कठिन परिश्रम है। इसके बाद थोड़ा सा आराम भी जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने रोजाना कार्यों में लग जाइए। अब अपना ज्यादा समय अपना ख्याल रखने में, बच्चे को अपना दूध पिलाने में और उसका ख्याल रखने में बिताएं। बच्चे के जन्म के बाद आप अपने डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं और दी गई दवाइयां जरूर लें। अब आपको अपने लिए और आपके बच्चे के लिए भी खाना है। आपके खाने की असर बच्चे पर होती रहती है, उसका ख्याल रखते हुए खाएं, दी गई दवाइयां लेते रहें और जरूरी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी लीजिए। शरीर में आए बदलाव को फिर से नॉर्मल करने का उपाय है एक्सरसाइज। बड़ा हुआ पेट भी सामान्य हो सकता है, बड़ा हुआ वजन भी कम हो सकता है। जरूरत है रोजाना धीरे धीरे अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार एक्सरसाइज करने की।
प्रेस का व्यायाम, बैक स्ट्रेच, पीठ के लिए क्रंचेस, हिप साइकिलिंग, एब्डोमिनल मसल्स के लिए केगल, पेल्विस फ्लोर के लिए। बच्चे के जन्म के बाद यह व्यायाम करते रहें, धीरे धीरे मात्रा और इंटेंसिटी बढ़ाते रहें, अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार।
ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे के जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके उतना अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश करें। आपके शरीर से आने वाला सबसे पहला दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो थोड़ा घट्ट और पीला होता है, जो बच्चे को सही पोषक तत्व और रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करता है, जिसका बाहरी वातावरण में आने के बाद बच्चे के लिए बहुत महत्व है। ज्यादा दूध और मैच्योर मिल्क बच्चे के जन्म के तीसरे दिन से आता है। अपने बच्चे को दूध पिलाने का ये तरीका बहुत ही आरामदायक है। इस तरह अपनी गोद में तकिया रखकर बच्चे को अपनी तरफ लिटाकर उसकी गर्दन को अपने हाथ की कोहनी से सपोर्ट देकर इस तरह निपल को बच्चे के मुंह में दे अपनी तरफ खींचे, साथ ही अपने स्तन को भी सपोर्ट दें। बच्चे को दोनों स्तनों से बारी बारी दूध पिलाते रहें ताकि दोनों स्तनों में दूध बढ़ता रहे। अपने स्तनों की निपल से बच्चे के होठों को छुएं ताकि बच्चा मुंह खोलकर पीना शुरू कर सके। सिर्फ निपल ही नहीं, पूरा एरियोला उसे लेने दें। आपकी ममता भरी गोद बच्चे को सुरक्षा और ममता का एहसास दिलाती है। बच्चे को जब भी भूख लगे तब उसे स्तनपान कराएं। समय आप तय ना करें। पहले 4 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण खाना पीना और आहार है। इससे बच्चे का विकास बढ़िया होता है और इससे बच्चे की रोग प्रतिकारकता भी बढ़ती है। माता अपना सारा प्यार स्तनपान के माध्यम से बच्चे को देती है। स्तनपान कराना माता के लिए बहुत फायदेमंद है। वजन और फिगर इससे जल्दी सही होते हैं। गर्भाशय जल्द ही पूर्व स्थिति में आता है और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम देता है। हर बार दूध पिलाने के बाद इस तरह हाथ फेरना बच्चे के लिए अच्छा है।
जब बच्चा बार बार स्तन से दूध पीता रहता है तो 2-3 दिन में ही ज्यादा स्तनपान आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है, ब्रेस्ट में एकदम टाइटनेस आ सकती है, जिसे हम कहते हैं एंगॉजमेंट। तो अगर आप धीरज रखेंगे, अपने हाथ से ही पेरिफेरी से सेंटर आप मसाज करके एक्स्ट्रा मिल्क निकाल देंगे, उसे स्टोर भी कर सकते हैं, तो काफी राहत मिलेगी। जरूरत हो तो गर्म पानी में नैपकिन डाल के उसे निचोड़ के आप स्तन के ऊपर रखेंगे, तभी भी उसे आराम मिल जाएगा।
मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो प्रोग्राम की इम्पोर्टेंट टिप्स फिटनेस के ऊपर, पोस्चर केयर के ऊपर, खान पान के ऊपर, पोस्टनेटल रिकवरी के ऊपर और आसान लेबर के ऊपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। और आप उसे जरूर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे लोगों से उसके बारे में बात भी करेंगे। अगर ये वीडियो प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसके मैसेजेस बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, बहुत सारी लेडीज तक जरूर पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।
बेबी मसाज आयुर्वेद शास्त्र से मिली हुई एक प्यारी देन है। हमारी भारतीय संस्कृति का ये एक अनोखा गहना है। अपने नन्हे फरिश्ते की तरफ सारी ईश्वरीय सौगातों को पहुंचाने का एक सुंदर सा तरीका है, जिससे आपका स्नेह सकारात्मकता आप अपने बच्चे तक ले आते हो। बच्चे का मसाज कब शुरू करना है ये कभी भी ध्यान रखिए कि बच्चे की नाभि जब सूख जाती है, कॉट क्लैंप गिरने के बाद ही मसाज करना बेहतर रहता है। अपना बच्चा इसे खेलने के अभ्यास के तौर की तरह लेता है, जिससे वो पहले ही महीने से बच्चा स्पर्श की भाषा समझने लगता है। स्पर्श ये प्यारी चिकित्सा है, स्पर्श एक जादू है। बच्चे की बढ़त का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। स्पर्श से बच्चा शांति से सो जाता है और बच्चा हमेशा खुश भी रहता है। मालिश कौन कर सकता है तो बच्चे की मालिश माँ, दादी या पिता द्वारा कोई भी करे तो भी अच्छा रहता है। जब बच्चे को भूख लगी है, जब बच्चे का पेट भरा हुआ है, तब मसाज मत कीजिए। दूध पिलाने के बाद आधा पौना घंटा रुकने के बाद ही मसाज कीजिए। अगर बच्चा बीमार है, उसे बुखार है, कफ है या पेट खराब हो या रैश हो तो मसाज मत कीजिए। मसाज 15 से 25 मिनट तक करना बेहतर रहता है। मसाज के लिए जो भी तेल लिया जाए वो शुद्ध हो या हल्का हो ये ध्यान रखना है। बादाम तेल, तिल तेल, हिमालय बेबी ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल, ऑलिव ऑयल, चंदन वाला लाक्षादी तेल या कोमल तेल, एरोमाथेरेपी का तेल आप यूज कर सकते हो। सुबह 8 से 10 बजे के बीच में मसाज करना बेहतर रहता है। जब वातावरण ज्यादा ठंडा नहीं है, हल्की धूप हो, उसी वक्त मसाज करना बेहतर रहता है। मसाज करने की तैयारी करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करने हैं। नाखून कट किए जाए और कोई भी अलंकार बिना पहने हुए ही मसाज करना है। मसाज करते वक्त बच्चे के साथ ढेर सारी बातें कीजिए, हंसते खेलते उसके साथ मसाज कीजिए। मसाज करते वक्त बच्चे के साथ ढेर सारी बातें कीजिए, हंसते खेलते उसके साथ मसाज कीजिए। मसाज करते वक्त नाक में, कान में, नाभि में बहुत तेल डालना नहीं है। पहले अपने आप को बहुत शांत कीजिए, लंबी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स कीजिए। अपने स्पर्श से बच्चे को सारी विशेषताओं की अनुभूति कीजिए। मसाज एक ईश्वरीय सौगातों का अनोखा गहना हम बच्चे को पहना रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। मसाज करते वक्त ध्यान रखिए कि अगर बच्चा बीमार है, बच्चे को इंजेक्शन दिया हुआ है, तो मसाज नहीं करना है। जब हम मसाज शुरू करते हैं, तब पहले हम सिर से मसाज करना शुरू करते हैं। बच्चे के सिर में आप देखोगे इस तरह एक हल्का सा नाजुक सा हिस्सा रहता है, जिसे हम एड्रिया फोंटेनल कहते हैं। वहाँ पे हल्के हाथ से तेल लगाना बहुत जरूरी होता है। इतना हल्का हाथ कि जितना प्रेशर आप हल्के हाथ से दोगे, बच्चे के लिए उतना ही अच्छा रहता है। फिर ये सारा तेल पिछले हिस्से की तरफ हल्के हाथ से लगाना है। सारे बालों को अच्छी तरह से तेल लगा के लेना है। सिर का मसाज होने के बाद आप पैरों को मसाज करना शुरू करना है। पैरों को मसाज करते वक्त एंकल जॉइंट की तरफ हल्के हाथ से पकड़ना है और सारा तेल जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह से लगाना है। इस तरह से हल्का प्रेशर देके बच्चे के हृदय की तरफ हमें तेल लगाना बहुत जरूरी रहता है। इस तरह से तेल लगाने के बाद इस तरह से बच्चे के पैर को पकड़िएगा। पैर पकड़ने के बाद हल्के से ट्विस्टिंग मूवमेंट करना है। प्रेशर हल्का होना बहुत जरूरी होता है। हल्के हाथ से ट्विस्ट करने के बाद बच्चे के एंकल को तेल लगाना है। एंकल जॉइंट को सारी दिशा से अच्छी तरह से तेल लगाइए और फिर पैरों को तेल लगाना है। पैर की उंगली की तरफ नीचे के हिस्से की तरफ हल्का मसाज करना है, प्रेशर देना है और उंगली को खींचना है। हर उंगली की तरफ नीचे प्रेशर, मसाज और खींचना है। इस तरह से मसाज, प्रेशर, उंगली को खींचना है और फिर इस तरह से तलवों को हल्का सा प्रेशर देना है। एक पैर का मसाज होने के बाद दूसरे पैर को उसी तरह से हृदय की दिशा में तेल लगाना है। उसके बाद में ट्विस्टिंग मूवमेंट करनी है। उसके बाद में एंकल जॉइंट को तेल लगाना है। फिर हरी उंगली की तरफ मसाज, प्रेशर, उंगली को खींचना, मसाज, प्रेशर, उंगली को खींचना और फिर तलवों को तेल लगाना है। पैरों को मसाज करने के बाद बच्चे के पेट को मसाज हम करना शुरू कर देते हैं। पेट के मसाज करते वक्त नाभि की दिशा पूरी गोल दिशा में इस तरह से सर्कुलर मोशन में तेल लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे को बहुत बार देखा जाता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन होती है या गैसेस की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से अगर हम गोल दिशा में तेल लगाते हैं तो गैसेस की प्रॉब्लम कम होती है। नाभि के नीचे जो निचला हिस्सा है उसके तरफ तेल लगाते वक्त हल्के प्रेशर से अगर आप तेल लगाते हो तो जिसके कारण बच्चे को पेट साफ होने में मदद होती है। तो इस नाभि के नीचे के हिस्से की तरफ आप इस तरह से आई एल यू ऐसे लिख के हल्के से प्रेशर देना है जिससे बेबी को पेट साफ होने में मदद होती है। आई एल यू इस तरह से तेल लगाना है। उसके बाद पेट का मसाज होने के बाद आप छाती का मसाज करना है। छाती को मसाज करते वक्त यहाँ पे जो आपको एक ट्रायंगुलर एरिया दिखता है वहाँ पे मसाज नहीं करना है, और इस तरह से आप जैसे किताब की जिस तरह से किताब के पन्ने खोलते हो इस तरह से मसाज आपने करना है। इस तरह से चार पांच बार मसाज करने के बाद शोल्डर्स को एक्स की शेप में मसाज करना जरूरी होता है। दोनों शोल्डर्स को मसाज करने के बाद जो शोल्डर्स के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाना है, दोनों साइड में तेल लगाना है। उसके बाद में जैसे हमने पैरों का मसाज किया उसी तरह से हाथों का भी मसाज करना है। हाथों को तेल लगाते वक्त इसी तरह से हृदय की दिशा में तेल लगाना है, फिर हाथों को पकड़ के हल्के से ट्विस्टिंग मूवमेंट करनी है, फिर हमें इस तरह से सारे जॉइंट्स को तेल लगाना है, और फिर पीछे की उंगली के नीचे के हिस्से को मसाज करना है, प्रेशर देना है और उंगली खींचनी है। सारी उंगलियों को उसी तरह से मसाज हमने करना है। इस हाथ का होने के बाद दूसरे हाथ को भी हृदय की दिशा में तेल लगाइए, उसके बाद में ट्विस्टिंग मूवमेंट कीजिए, फिर बच्चे को इस तरह से रिस्ट जॉइंट को तेल लगाइए, और फिर हर एक उंगली की तरफ नीचे के हिस्से को मसाज करना है, प्रेशर देना है और उंगली खींचनी है। हर एक उंगली को इसी तरह से करना है। इसके बाद हम बच्चे के चेहरे को मसाज करते हैं। चेहरे को मसाज करते वक्त हमें देखना है कि हमारी उंगलियों से हल्का प्रेशर हमें देना है, जैसे इस तरह से ऊपर की दिशा में स्ट्रोक्स हमें देने हैं। इस तरह से मसाज करने के बाद बच्चे के यहाँ पे सिर से हम शुरू करते हैं, फोरहेड से कानों की तरफ जाते हैं और चिन से इसी तरह से हम सर्कुलर मोशन में कानों की तरफ जाते हैं। इसी तरह से हमें मसाज करना रहता है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, फिर आंखों की तरफ भी उसी तरह से सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ इसी तरह से मसाज करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी नाक और हमारी आंखों के बीच में एक छोटा सा पॉइंट रहता है जिसे हम पंक्टम कहते हैं, और हमेशा बच्चे का वो जो होल रहता है पंक्टम वो ब्लॉक होने की संभावना रहती है, तो इसीलिए हल्के हाथ से यहाँ पे प्रेशर देना बहुत जरूरी है, जिससे ये पंक्टम ओपन हो जाता है और बच्चों के आंखों से गंदगी नहीं आती है, इसलिए इस तरह से उसको प्रेशर देना है। और फिर नाक का अगला हिस्सा है वो इस प्रकार से खींचना है। ये होने के बाद होठों की तरफ भी अंदर से बाहर ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। चिन को मसाज करते वक्त आप ध्यान रखिए कि इस तरह से गोलाई में मसाज करके हल्का सा वहाँ आप प्रेशर दे सकते हो। यहाँ पे हल्का सा मसाज करके प्रेशर देना है। अगले हिस्से का मसाज होने के बाद आपकी उंगलियों को इस तरह से घुमाइए जिससे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और सारे सेल्स को अच्छे से एक्टिवेशन मिल जाती है। अगले हिस्से का मसाज होने के बाद आप बच्चे को इस तरह से उल्टा कीजिएगा, फिर आप जैसे एंट्रियर फाउंटेनेल को मसाज किए थे उसी प्रकार से पोस्टियर फाउंटेनेल को बाहर से अंदर की तरफ इसी तरह से मसाज करना है। इस तरह से मसाज करने के बाद सारा तेल रीढ़ की हड्डी को इस तरह से हल्के हाथ से गर्दन से कमर की तरफ ले आना है। उसके बाद में यहाँ से हम नीचे से बाहर की तरफ ऐसे ही सारे मसल्स को, सारे नर्व एंड्स को हल्के से मसाज आपने करना है। सारे हिस्सों को अच्छी तरह से तेल लगाना है। शोल्डर्स को ज्यादा मसाज कीजिए क्योंकि बच्चे की शोल्डर्स के ऊपर हम हमेशा उसको पकड़ने वक्त ज्यादा प्रेशर आता है, सो अच्छे से वहाँ शोल्डर्स को मसाज कीजिए। सारे पीठ रीढ़ की हड्डी को पिछली मसल्स को अच्छी तरह से मसाज करना है। ये सारा मसाज होने के बाद जैसे आगे की तरफ हमने उंगली घुमाई थी वैसे ही पिछले हिस्से की तरफ उसी प्रकार से उंगली घुमानी है। फिर बच्चे को अच्छे से सीधा करके उसको एक्सरसाइज करानी है, जैसे हम करते हैं बच्चे के पैरों को ऊपर सिर को लगाना है या बच्चे को क्रॉस करना है इस प्रकार से। और जो पीटी एक्सरसाइजेस है वो सारे एक्सरसाइज हमने करानी है। फिर हल्की धूप में बच्चे को बिठा के उसके बाद हमने बच्चे को नहलाना है। मसाज करने के बाद बच्चे को हल्के गर्म पानी से नहलाना है। नहलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि बच्चे को साबुन की बजाय अगर आप मसूर की दाल का आटा उसमें थोड़ा सा दूध और हल्दी मिक्स करके यूज करते हो तो बच्चे के स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। नहलाने के बाद बच्चे को अच्छे से सूखे से कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर आप वेखन चूर्ण जो बाजार में मिलता है उसको अच्छे से छान के उस वेखन चूर्ण को पिंच में लेना है और बच्चे को सिर से लगाना है, यहाँ छाती को लगाना है और बच्चे के तनुओं को लगाना है। वेखन चूर्ण ये कफ में माना गया है, बच्चे को हमेशा कफ की बीमारियां होती है तो इसके लिए वेखन चूर्ण जो है बच्चे को कफ से अच्छी तरह से प्रोटेक्शन देता है। वेखन चूर्ण बुद्धि के लिए भी बहुत जरूरी रहता है। इसी के साथ वेखन चूर्ण स्किन के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद माना जाता है, इसलिए हम वेखन चूर्ण का फायदा करते हैं। बच्चे को वेखन चूर्ण लगाने के बाद हल्के सॉफ्ट कपड़े में रैप करना है और उसके बाद बच्चे को दूध पिला के सुलाना है। दाएं तरफ अगर आप अपने बच्चे को झुलाते हो तो बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि माँ के हृदय के स्पंदनों से बच्चा अपने पेट में रहता है तब से वाकिफ रहता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो खुशी से भरी हुई है और आनंद से परिपूर्ण है। आप जो मसाज करते हो उससे बच्चे को बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो रक्त संचार को सक्रिय कराने वाली एक कृति है, बच्चे की पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी तरह से सक्रिय हो जाती है और बच्चे की प्रतिकारक क्षमता भी उससे बढ़ाने में मदद होती है। बच्चे के शरीर के तापमान को वो बनाए रखती है और नियंत्रित भी करती है। बच्चे को स्वस्थ और चमकती त्वचा मसाज से मिलती है। गहरी नींद आने के लिए भी मसाज बहुत सहायक होता है। शिशु को दूध पिलाने के दौरान अपने विकास में ये बहुत सहायक होने वाली बात है। अपने परिवार के बीच में एक गहरा बंधन ये प्रकाशित करती है। यह माँ का तनाव कम करने में मदद करती है। मसाज एक बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है जो अगर हर माँ बहुत खुशी से कर ले तो उसका फायदा बच्चे को भी होता है। फिर भी एक बात ध्यान रखना है कि मसाज करते वक्त अपने बच्चे को जितनी पॉजिटिव बातें आप बता सके उतनी बताना है। मसाज करते वक्त मोबाइल अपने आप से दूर रखना है, टीवी के सामने बैठ के मसाज नहीं करना है। आप पूरा ध्यान आपके बच्चे की तरफ केंद्रित करना है। आपके बच्चे के लिए ये मसाज उसका सुंदर भविष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इसका लाभ जरूर उठाइए। धन्यवाद।